नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः यार ज्ञान शक्ति कोटि सूर्य रन्नो मीरिदे मत्तु यार दिव्य ध्वनियु लोक हितव माडिदे मूरु लोक दल्लियार कीर्ति व्याप्तवागिदे अंथ देव देवरल्लि नन्न तलियु बागिदे ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ. ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಜ್ ಕೆ ಅರ್ಹದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವನಾ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ आज की भावना का नाम है अर्हत भक्ति भावना. भक्ति किसकी करे? भक्त इसका भी कोई विशेष नियम है. भक्ति का सही सही फल की प्राप्ति यदि हम चाहते हैं भक्ति का फल यदि हम सही रूप में चाहते हैं तो जिसकी हम भक्ति करते हैं वो उपास्य भी सही होना चाहिए. भक्ति का प्रतिफल अवश्य चाहता है भक्त. पर प्रतिफल फल चाहने में यदि विवेक नहीं होता है तो भक्त भक्ति करते हुए भी भटक सकता है. भक्ति और भक्ति के प्रतिफल स्वरूप जो कामना है वह सही सही होना चाहिए. कामना कोई गलत नहीं है और भावना भी कोई गलत नहीं. भावना तो हर जगह समीचीन ही होती है. कामना हर जगह समीचीन नहीं होती, सही नहीं होती. कामना यदि बहिर्मुखी है तो असमीचीन मानी जाती है. कामना यदि अंतर्मुखी है तो समीचीन मानी जाती है. कामना करो कोई बात नहीं, करना ही चाहिए. पर अंतर्मुखी होकर अंदर की कामना करे या बहिर्मुखी बनकर बाहर की कामना करे इतना विवेक रखो. सुन रहे हैं ना, बड़ी बात बताई जा रही है. विवेक बहुत 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 आवश्यक है. हम भक्त बनना चाहते हैं तो किसका भक्त बने, किसके पास जाएं, किसकी भक्ति स्वीकार करें, उस उपास्य को ढूंढने लगते। और उपास्य तो वैसे देखो तो एक ही होता है, जो निर्दोष होता है, पवित्र होता है, पावन होता है, दोषों से मुक्त होता है, 18 दोष जिसमें नहीं होते वे पवित्र माना जाता है। ऐसे पवित्र को ही, पवित्र आत्मा को ही हमें उपास्य समझना चाहिए। उपास्य का सही सही परिचय न हो तो भक्त भटक सकता है, और कामना तो कर ही रहा है। किसकी कामना करना चाहिए? दो प्रकार की कामना है, एक बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। इसमें भी विवेक से भटक जाता है तो भटक ही जाता है। बाहर में उपास्य कौन है इसका निर्णय हो, इसका विवेक हो, यह तय हो कि बाहर में सही उपास्य कौन है, और भक्ति में किसमें, और भक्ति में किसकी भक्ति करे इसका भी निर्णय हो। हमारी भक्ति में विवेक हो, यदि भक्ति में ही विवेक नहीं है तो भक्त किस किस की भक्ति करता हुआ चला जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। भक्ति हमारा एक माध्यम है, माध्यम है क्या पाने के लिए? मुक्ति पाने का माध्यम भक्ति हो सकती है, या भुक्ति प्राप्त करने का माध्यम भक्ति हो सकती है? दो पाने की वस्तु हैं, एक मुक्ति है और एक भुक्ति है। भुक्ति 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 भोजन, भौतिक सुख, भुक्ति। भुक्ति की कोटि में क्या क्या आता है? केवल भोजन ही नहीं आता, आप बहिर्मुखी होकर जिस वस्तु की भी याचना करते हैं, कामना करते हैं, वह सब भुक्ति की कोटि में आता है। आएगा कि नहीं आएगा? जो शरीर की सेवा के काम में आते हैं पदार्थ, उनकी इच्छा करना बहिर्मुखी दृष्टि है। भक्त उपास्य के पास चले जाएं कोई बात नहीं, लेकिन उपास्य के पास भी यदि शरीर के सुखों का मांगने लग जाए तो भक्त की महिमा वहां घट जाती, भक्त का महत्व वहां समाप्त हो जाता है, और भक्त भक्त न रह करके वह एक नकली रूप धारण करता है, असली नहीं। भक्त कैसा हो? भक्त अंतर्मुखी बनकर भगवान के पास खड़ा है, और अंतर्मुखी बनकर अंतर में रहने वाले, आत्मा के भीतर रहने वाले गुण संपत्ति की उपलब्धि के लिए हाथ जोड़ करके खड़ा हो तो उसको हम सही भक्त कह सकते हैं। बहिर्मुखी दृष्टि से किसी भी उपास्य के पास जाने की जरूरत ही नहीं। समझ में आ रहा? बिल्कुल। बहिर्मुखी दृष्टि से किसी भी उपास्य के पास जाने की जरूरत नहीं। उपास्य इस दुनिया में क्यों हैं, तो हमें अंतर्मुखी बनाने के लिए हैं। मुख्य वो उद्देश्य है। उपास्य हमारी ओर देखते हैं, हमको पहचानते हैं। ध्यान से सुन रहे, उपास्य हमारी ओर देखते हैं, भक्त की ओर। उपास्य भक्त की ओर देखते हैं तो भक्त में यही देखते हैं वो, ये अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी है? देखेंगे कि नहीं देखेंगे, अंतर्मुखी है कि बहिर्मुखी। बहिर्मुखी हो तो मौन धारण करते, कुछ बोलते नहीं उससे, वो जो कुछ भी बड़बड़ा करके चला जाता है भक्ति करके, उससे भी कोई मतलब नहीं रखते। भक्ति में भी परिशुद्धता, निर्मलता, निर्दोषता, विवेक पूर्णता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमारी भक्ति में निर्मलता लाने के लिए हम कैसे रहें, ये हमें विचार करना चाहिए। अरहंत के पास जाएं, गुरुओं के पास जाएं, कहीं भी जाएं, हम कैसे रहे? पहले गुरु के पास जाते हैं तो गुरु की भक्ति करते हैं, भगवान के पास जाते हैं तो भगवान की भक्ति करते हैं। ये दोनों ही हमारे उपास्य हैं, हम इनकी उपासना करते हैं। उपासना करते हैं इसलिए हमारा नाम उपासक, उपासक। और उपासना करते करते हम उपास भी रह सकते, उपासना में उपवास पूर्वक उपासना कर सकते हम। सुन रहे हैं क्या? नींद आ रही है? नींद नहीं करना, मौके पर नींद नहीं करना। ऐसा ही होता है, जब मौका आता है तभी हमें ऐसे होती है, फिर वो निकल जाता है। देव, शास्त्र और गुरु, ये तीन हैं हमारे सामने। ये तीनों हमारे उपास्य हैं या उपासक हैं? उपास्य है ना, इतना तो मालूम है ना, उपास्य हैं। ठीक है, अब हम उपासक सिद्ध कर देंगे, देख लेना। भक्त आया देव शास्त्र गुरु के सामने, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने लगा, लेकिन वह बहिर्दृष्टि है। भक्त बहिर्दृष्टि है, भक्त बहिर्दृष्टि है, तो देव शास्त्र गुरु के सामने खड़ा होकर क्या मांगेगा बोलो? भौतिक सुख मांगेगा ना, निश्चित बात है। बहिर्दृष्टि वाला भौतिक सुख ही मांगता है, इसमें कोई संदेह, निश्चित बात है। जब वह बहिर्सुख को मांगता है तो बहिर्सुख क्या है? धन, संपत्ति, वैभव। क्या वैभव? धन, संपत्ति, सुख, वैभव मांगता है। जब धन, सुख, संपत्ति, वैभव मांगता है तो देने वाले कौन? देव शास्त्र गुरु। और लेने वाले कौन? उपासक, भक्त, ये लेने वाला। और वह निवेदन कर रहा है, मुझे ये दे दो, मुझे ये चाहिए, इस कामना की पूर्ति करो, ये कह रहा है। तो ऐसा कहते समय देव शास्त्र गुरु को अपना सेवक मान रहा है कि नहीं? क्यों? हे भगवान, मेरे में कुछ नहीं, ये ला करके दे दो, तो सेवा कौन करेंगे? भक्त करेगा क्या, भगवान करेंगे? वो तो सेवक हो गया क्या? नहीं, हाँ इतना ही समझना है, बात पकड़ करके समझो। यदि हम देव शास्त्र गुरु के सामने बहिर्मुखी बनकर सांसारिक विषय कषायों की याचना कर रहे हैं तो उनको हम सेवक बना रहे हैं क्या? नहीं, गलत हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया, गलत नहीं हुआ, बहुत बड़ा पाप हुआ। देव शास्त्र गुरु से हमें भौतिक वस्तु नहीं मांगना चाहिए, ये हमारी विवेक, हमारा विवेक है। ऐसा विवेक क्या रख करके हम भक्ति कर सकेंगे भविष्य में? अभी तक जो कुछ हुआ है हुआ है, अज्ञान में हुआ है। बहिर्दृष्टि बनकर के जितना भी हमने किया उससे पाप ही किया है। पुण्य और धर्म हुआ ही नहीं। क्या हम इतना कर सकेंगे भविष्य में? हाथ जोड़ो, फिर करना हो तो भगवान से बोलो, हे भगवान, आपसे कभी भी हम विषय कषायों की याचना नहीं करेंगे। देव शास्त्र गुरु की जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में निर्मलता होनी चाहिए कि नहीं? और निर्मल भक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराती है। भक्ति की निर्मलता कैसे होनी चाहिए? कामना से रहित होनी चाहिए। कौन सी कामना? विषय कषायों की कामना से मुक्त होनी चाहिए। सुन रहे हैं? कैसे सुन रहे हैं? आंख मीच करके या आंख खोलकर? आंख नहीं मीचना फिर यूं यूं हो जाती, निद्रा देवी बहुत जल्दी आती। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना हो तो निर्मल भक्ति करना चाहिए। निर्मल भक्ति का स्वरूप क्या है? हमारे मन में बाह्य वस्तुओं की कामना न हो, यही निर्मल भक्ति है। संसार में बहुत सारे लोग उपास्य बना लेते हैं, किसी भी जीव को उपास्य बना लेते हैं, भक्ति करते हैं, उससे याचना करते हैं, कामना करते हैं और उससे पाने की इच्छा रखते हैं। यह भक्ति और वह उपास्य जिसकी भक्ति की जा रही है, ये दोनों ही सदोष हैं क्या निर्दोष? भक्ति भी सदोष है और इसकी भक्ति को, यानी जो भक्त बहिर्दृष्टि रख करके वस्तुओं की कामना करता है और उस वस्तु की कामना मैं पूर्ण करता हूँ ऐसा कहकर मेरी भक्ति करो, आओ मेरी भक्ति करो, तुम जो इच्छा रखते हो उसको मैं पूर्ण करता हूँ, ऐसा कहने वाला उपास्य समीचीन उपास्य होता है क्या? कैसा होता है फिर? अब तो उत्तर देने वालों को एक नियुक्त किया जाए, कठिन समस्याएं जहां आती है वो एकदम हल हो जाते हैं। सही उत्तर दिया। दुनियादारी की धंधा करने वाले उपास्य उपास्य नहीं कहलाते और उपास्य नहीं हो सकते। भक्तों को इकट्ठा करके भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाला उपास्य वास्तविक उपास्य नहीं माना जाता। और वह उपास्य हो या उपास्या हो क्या फर्क पड़ता है? वो दोनों ही समीचीन नहीं हो सकते। और वह उपासक हो या उपासिका हो क्या फर्क पड़ता, वे दोनों ही समीचीन नहीं हो सकते यदि बहिर्दृष्टि है तो। हम भक्त हैं और ये भगवान हैं, हम आराधक हैं और ये आराध्य हैं, इसका संबंध केवल अंतर्मुखी होने के लिए है। केवल एक ही उद्देश्य, भगवान हमारे लिए क्यों है तो अंतर्मुखी होने के लिए है, गुरु हमारे लिए क्यों है, हमने गुरु को क्यों बनाया तो हमको अपनी आत्मा को अंतर्मुखी बनाने के लिए गुरु को बनाया, ठीक है ना, एकदम एकदम ठीक है। और जो कहा जा रहा है और एकदम दम उसमें है, ठोस है बात, बात ठोस होनी चाहिए, बात ऐसी होनी चाहिए संसारी प्राणियों को वस्तुतः दुख से उठाकर सुख में पहुंचाने वाली बात होना चाहिए। हम सभी भक्त हैं क्या भगवान हैं? भक्त हैं, और भक्त हैं तो भक्त बने बिना भगवान बनना चाहते हैं क्या? भक्त बनकर के भगवान बनना चाहते हैं? भक्त बनकर भगवान बनना चाहते हैं तो भक्त बनने के लिए एक पात्रता होती है। भक्त बनने के लिए एक पात्रता चाहिए, किस प्रकार की पात्रता चाहिए? निर्दोष पात्रता चाहिए, बिल्कुल सही है। और निर्दोष पात्रता का नाम है अंतर्मुखी होना, बहिर्मुखी कभी भी नहीं होना। घर को छोड़कर ये कदम भी बाहर रख रहे हैं और मंदिर, भगवान, गुरु, शास्त्र, प्रवचन इत्यादि आपके मन में आ रहे हैं तो उनकी ओर जाने से पहले अपने को पात्र बना करके बाहर निकलना चाहिए। मैं कहां जा रहा हूं? मंदिर जा रहा हूं, पहले पात्र बनो। कैसे? मेरे मन में आज तक अज्ञान के कारण से, बहिर्मुखी दृष्टि होने के कारण मैं बाहरी वस्तुओं को मांगता रहा, आराध्यों से, उपास्यों से, भगवंतों से, गुरुओं से, शास्त्र से, बाह्य वस्तु मांगता रहा, बाह्य पदार्थ मांगता रहा। ये मेरी अज्ञानता है और ये अज्ञानता आज मुझे समझ में आ गई है, मुझे समझ में आ गई है, इसलिए आज मैं निकल ही रहा हूं तो ऐसे निकलूं, बाहर निकल ही रहा हूं तो ऐसे निकलूं। मैं किसी की याचना करने के लिए भगवान के पास नहीं जाऊं, भगवान के पास जाकर के केवल मैं अंतर्मुखी बनने की प्रार्थना करूं, भगवान के पास जाकर के मैं किसकी प्रार्थना करूं? अंतर्मुखी बनने की प्रार्थना करूं, मैं भी भगवान बनने के लिए भगवान से प्रार्थना करूं। भक्त भगवान बन सकता है क्या? नहीं। और भगवान से भगवान बनने की प्रार्थना भक्त कर सकता है क्या? नहीं। करना गलत है क्या? हे भगवान, मैं आपके बराबर ऊंचा बनना चाहता हूं। भगवान कहते हैं मेरे से भी ज्यादा ऊंचा बनो, लेकिन भगवान बनो, कुछ नहीं बनो। भगवान कहते हैं भक्त से, यदि तुम सच्ची भक्ति करोगे तो भगवान बन सकते, लेकिन सच्ची भक्ति तो वही है जो तुम्हारी आत्मा को परमात्मा बनना चाहते हो, बनाना चाहते हो, वह तुम्हारी निर्दोष भक्ति है। जैन धर्म का जो व्याख्यान हुआ है, भक्त को भगवान बनाने के लिए हुआ है, भक्त को भक्त ही बना करके रखने के लिए नहीं हुआ है? हाँ, अंतर्मुख होने के लिए। भक्त यदि अंतर्मुखी हो गया तो भगवान बनने में देर नहीं लगती, बहुत जल्दी वह भगवान बन जाता है। और अंतर्मुखी जीव को ही सम्यक दृष्टि कहा है। सुन रहे? कौन सा जीव सम्यक दृष्टि? अंतर्मुखी जीव ही सम्यक दृष्टि है। और जिस दिन आप अंतर्मुखी बनते हैं ना, उसी दिन अनंतानुबंधी कषाय, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये छह कषाय जो अंतर्मुखी बनने से हमें रोक रही थी, वो सभी नष्ट हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। वो कितने कर्म? छह कर्म। कौन कौन से? अनंतानुबंधी चार, क्रोध, मान, माया, लोभ, और कौन सा? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये दोनों छह हो गए। ये छह प्रकृतियां जिस दिन आप अंतर्मुखी बनते हैं उसी दिन ये समाप्त हो जाते। चाहे अभी बन लो तो अभी, चाहे कल बन लो तो कल, कभी भी, जब आंख खोलो तब सवेरा, आंख मेचो तो अंधेरा। कितनी तीव्र जिज्ञासा है आप में। अभी बनने का सूत्र यही तो है ना, बहिर्मुखी दृष्टि है क्या नहीं, इतना परिशीलन करो और अंतर्मुखी होकर के देख लो कि हम अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी। हम पूजन कर रहे हैं, बहिर्मुखी दृष्टि कौन से कर रहे हैं कि अंतर्मुखी दृष्टि कौन से? हम विषय कषायों की चाह रख करके कर रहे हैं कि परमार्थ की चाह रख करके कर रहे हैं? इतना देख लो, ये सूत्र है हमारा परिशीलन करने का। ये सूत्र ले लो और अंतर्मुखी होकर के देख लो, मेरे मन में वस्तुओं की कामना है या आत्मा को अंतर्मुखी बनाकर उसके भीतर रहने वाले दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि संपत्ति की चाह हमें है, कौन सी चाह है, इतना परिशीलन कर लो। कर लिया? हाँ, क्या रिजल्ट है फिर? कर लिया? सब लोगों ने कर लिया? नहीं किया है? कर लिया? क्या परिशीलन कर लिया? अंतर्मुखी हो करके देख लिया कि नहीं? तो आपकी यह भक्ति किस लिए है? अंतर्मुखी होने के लिए, भगवान बनने के लिए है क्या भौतिक सुख पाने के लिए है? भगवान बनने के लिए है। यदि भगवान बनने के लिए है तो आप सच्चे भक्त हैं भगवान के, और सच्चे गुरु के भक्त हैं, सच्चे शास्त्र के भक्त हैं। सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र और सच्चे भगवान, इन तीनों में फर्क नहीं होता, तीनों सच्चे ही होते। एक
शंका है, इस काल में तो भगवान नजर नहीं आते
हैं। हाँ,
और जिन्होंने तो मौन है।
हाँ,
में, हाँ, आप तो आपसे हम लोग रहेंगे, वही सुनेंगे।
हाँ ठीक है, हम भी इसलिए समक्ष हैं आपके। हम आपके समक्ष क्यों बैठे हैं या किस लिए फालतू बैठे हैं? आप भगवान बनने के लिए राजी हैं, अंतर्मुखी होने के लिए राजी हैं, विषय कषायों की चाह को छोड़ना चाहते हैं, इसलिए तो हम समक्ष आकर के बैठे हैं। अगर एक भी इसमें ऐसा हो कि हमको अंतर्मुखी होना नहीं है तो मेरा नाता उनसे कुछ भी नहीं, मेरा संबंध उनसे कुछ भी नहीं है और उनका संबंध मेरे से कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा विषय अलग है और आपका विषय अलग है। जो आप चाहते हैं वो मैं नहीं दे सकता, जो आप चाहते हैं वो मैं नहीं दे सकता, और मैं जो चाहता हूँ वैसा आप बन नहीं सकते। मैं जो चाहता हूँ वैसा आप बन नहीं सकते। परंतु इतनी संभावना से हम आपके समक्ष बैठे हैं कि ये बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनने की पात्रता रखते हैं और बन सकते हैं, इसलिए मैं बैठा हूं। और यदि आप में बनने की पात्रता नहीं है, महाराज हम बिल्कुल नहीं बन सकते, ऐसा हाथ जोड़ करके कहो, मैं मौन हो जाता हूं, कोई नाता नहीं किसी से। मैं उन भक्तों को लेकर के क्या करूं जो बहिर्मुखी हैं। देव शास्त्र गुरु के सामने ऐसे भक्त चाहिए जो अंतर्मुखी हैं, तो देव शास्त्र गुरु भी प्रसन्न रहते अंतर्मुखी भक्तों को देखकर, सुनकर, उनकी क्रियाकलापों को देखकर खुश खुश होते हैं वो। क्यों? वो हमारे समान बनने के लिए आ रहा है, इसलिए। आज अंतर्मुखी बनेंगे तो आज न कल गुरु बनेंगे ही, आज अंतर्मुखी बनेंगे तो आज न कल भगवान बनेंगे। और भगवान बनाना हमारा मंजिल है, गुरु बनना तो हमारा एक बीच का रास्ते का पड़ाव है। गुरु आज न कल बनना ही पड़ेगा, नहीं तो भगवान बनने का कोई रास्ता, आज तक जितने भी मोक्ष गए हैं सीधा भगवान कोई बने हैं क्या? बोलो, यदि ऐसा कहेंगे तो दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर मुनि पद पाए बिना, साधु पद पाए बिना सीधा ही भगवान बनने का कोई मार्ग होता तो मुनि पद की जरूरत नहीं रहती, सभी सीधे 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 चले जाते, डायरेक्ट चले जाते। आज तक साधु बने बिना कोई भी सिद्ध भगवान नहीं बने, अरहंत भगवान नहीं बने, साधु बन करके ही अरहंत बनना पड़ता है। हाँ, ये बात अलग है, उपाध्याय बनो या नहीं बनो, आचार्य परमेष्ठी बनो या नहीं बनो, उपाध्याय परमेष्ठी और आचार्य परमेष्ठी, ये दो परमेष्ठी बनने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये दोनों पद केवल संघ को चलाने के लिए, संघ में रहने वाले साधु परमेष्ठियों के संचालन के लिए होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी साधुओं को पढ़ाते हैं और आचार्य परमेष्ठी साधुओं का देखभाल करते हैं, उनको प्रायश्चित, उनकी दीक्षा, उनकी शिक्षा का विकल्प रखते हैं। ये दोनों विकल्प वाले पद हैं, एक दीक्षा शिक्षा आदि का विकल्प रखते हैं और एक पढ़ाने का, ज्ञान संवर्धन करने का विकल्प रखते हैं। ये कौन? उपाध्याय परमेष्ठी। पढ़ाने का विकल्प उपाध्याय परमेष्ठी को होता है और दीक्षा देकर शिष्य के देखरेख का विकल्प आचार्य परमेष्ठी को होता है। ये विकल्प के दो पद हैं, निर्विकल्प का एक ही पद है, और इसलिए आचार्य परमेष्ठी को भी लास्ट में जाकर के साधु ही बनना पड़ता है। लास्ट में कब? संलेखना के काल में, मरण के काल में, मरण आने से पूर्व इस विकल्प पद को, आचार्य पद यानी विकल्प पद, उपाध्याय पद यानी विकल्प वाला पद, इन पदों को त्याग करना पड़ता है और साधु पद पर प्रतिष्ठित होना पड़ता है। दीक्षा लेते समय डायरेक्ट आचार्य नहीं बने थे, पहले साधु ही बने थे, साधु बनने के बाद आचार्य बने थे, किंतु मरण के काल में पहले जो बने थे वही बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? साधु ही बनना पड़ेगा। साधु नहीं बनेंगे तो संलेखना सही नहीं हो सकती, सविकल्प समाधि कहलाई थी। सविकल्प मरण के अंतिम समय तक आप शिष्यों के विकल्प रखेंगे, शिष्यों का विकल्प रखेंगे। मरण हो रहा है, इधर आओ, कैसे हो, ठीक हो क्या नहीं पूछेंगे? नहीं। मरण के काल में कोई भी पूछताछ की जिम्मेदारी नहीं रहती, इसलिए एक योग्य शिष्य को बुलाकर वे उनको अपने विकल्प के पद को सौंप देते हैं और स्वयं साधु परमिष्ठि बनते हैं। यानी साधु को आचार्य गुरु कहलाते, ठीक है ना? साधु परमिष्ठि को आचार्य परमिष्ठि गुरु कहलाते हैं, साधु परमिष्ठि को उपाध्याय परमिष्ठि गुरु कहलाते हैं और साधु परमिष्ठि शिष्य कहलाते हैं। अब अंतिम टाइम आ गया, एक साधु परमिष्ठि को बुलाया और ये विकल्प के पद को उनको दे दिया, उन्होंने ले लिया। अब गुरु कौन और शिष्य कौन? जो गुरु थे वो शिष्य हो गए और जो शिष्य थे वे गुरु हो गए। गुरु पद तो बाद में आता है, पहला किसी न किसी गुरु के शिष्यत्व को स्वीकार करके शिष्य बनना पड़ता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, ये मालूम है ना? जिसके जीवन में गुरु नहीं वो शिष्य है क्या? जिसके गुरु जीवन में गुरु है ही नहीं उनको शिष्य कह सकते हैं क्या? तो शिष्य कब बनता है? शिष्य कब बनता है? जब किसी को गुरु बनाने पर ही शिष्य कहलाएगा ना। हाँ, हो गया ना, क्या आश्चर्य की बात है। गुरु ही चेला हो गया, चेला ही गुरु हो गया, और चेला को गुरु किसने बनाया? गुरु ने बनाया। देखो हमारे भगवान और गुरु कितने उदार हैं, सबको बड़ा बनाना चाहते। ये शिष्य तुम शिष्य बनकर के मत रहो, गुरु बनो। गुरु बना लिया और शिष्य के मन में पहले से ही कामना हो कि मुझे गुरु बनना है, मुझे गुरु बनना है, मुझे गुरु बनना है, तो ये कामना ठीक नहीं। आचार्य पद की कामना और उपाध्याय पद की कामना शिष्य को नहीं करना चाहिए, यही उसका शिष्यत्व है। शिष्यत्व त्व किसको बोलते हैं? त्व शिष्यत्व, त्व प्रत्यय लग गया है। शिष्यत्व क्या है? मैं इन विकल्पों के पदों से दूर रहूं, अभी तो बहुत अच्छा हूं, निर्विकल्प हूं, इसमें ही आत्मा की साधना धर्म की साधना उत्कृष्ट होती है। गुरु को इतना नहीं होती जितना शिष्य को धर्म की आराधना निर्विकल्प रूप से होती रहती है। गुरु एक क्षण भी निर्विकल्प बैठ नहीं सकते, किसके कारण? शिष्यों के कारण। और शिष्य तो शिष्य है, जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, कितने निर्विकल्प रहते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, कैसे भी बैठ रहे हैं, कैसे भी उठ रहे हैं, कितने निर्विकल्प हैं। और माँ बाप उसको क्या करते हैं? बैठ यहां, ऐसा नहीं दौड़ना, गिर जाएगा, ये शिक्षा देते माता पिता। उधर क्यों जा रहा है? उधर गड्ढा है, गिर जाएगा, दांत टूट जाएंगे, इधर आ, इधर ही बैठना चाहिए। ठीक बैठ, हाँ ठीक बैठना चाहिए, हाँ उठ जा, ठीक ठीक उठना चाहिए, हाँ ठीक उठना चाहिए। ये कौन सिखाते हैं? माँ बाप सिखाते हैं। वो इतना निर्विकल्प है, इतना निर्विकल्प है कि उस निर्विकल्पता में अपने आप को भूल गया है। मैं क्या कर रहा हूँ यही मालूम नहीं रहता, और जिसको मालूम नहीं रहता उसके जीवन के लिए कोई गुरु चाहिए पड़ता है, और उसके गुरु माँ और बाप है। छोटे बच्चे आपको सुधारते हैं कि छोटे बच्चों को आप सुधारते हैं? बच्चों से अगर माँ बाप सीखने वाले, सीखने की पात्रता रख रहे हैं, तो इसका मतलब वे माँ बाप के पद को, उसकी गरिमा को कम कर रहे हैं, उसकी गरिमा समाप्त हो जाएगी। बच्चों से नहीं सीखो, बच्चों से सीखने से पहले तुम सब कुछ सीखो, सीख करके आओ फिर सिखाओ, सीख करके आओ सिखाओ। सिखाने के लिए माँ बाप का पद है, क्या सीखने के लिए है? तो माँ बाप को कितना ऊंचा रहना चाहिए पहले से ही, हाँ? कितने ऊंचे रहने चाहिए, सब कुछ सीखा हुआ होना चाहिए। बच्चे से हमें कुछ भी सीखना नहीं पड़े, ऐसा सीखा हुआ विषय रहना चाहिए आपके पास। बच्चा मंदिर जाना सिखा रहा, बच्चा आपको मिथ्यात्व छोड़ना सिखा रहा, तो आप माँ बाप कैसे उसके? ये सब बातें किसको कौन सिखाएं? माँ बाप ही बच्चों को सिखाएं, क्योंकि अभी जन्मा है, कुछ भी पता नहीं है, सम्यक दर्शन पता नहीं, मिथ्या तो पता नहीं है, उसको सम्यक दर्शन की बातें सुनाकर सम्यक दृष्टि बनाना चाहिए माँ बाप को। और माँ बाप का जीवन तो ऐसा चला गया बचपन से कि सम्यक की बात ही पता नहीं, बड़े बनने के बाद सम्यक दृष्टि बन रहे हैं। 8 साल की उम्र में सम्यक दृष्टि बनना चाहिए था, 8 साल की उम्र में सम्यक तो प्राप्त करना चाहिए था। और आपका बच्चा छोटा लाला गोदी में बैठ करके देख रहा है तुम्हारी चर्या, गोदी में बैठ करके तुम्हारी चर्या देख रहा है, और तुम उपास्य की पूजा कर रहे, और वो गोदी में बैठ करके आपको सिखा रहा है, माँ ये क्या कर रही है, ये क्या उपास्य है, क्या ये कौन है, ये वस्त्रधारी है, इसकी क्यों पूजा कर रहे? बच्चा सिखा रहा है माँ को, वस्त्रधारी की पूजा माँ कर रही है, और बच्चा सिखा रहा है कि ये क्या कर रही है गलती। और बच्चा, वह बच्चा और माँ दोनों मिलकर के जब गुरु के पास आते हैं, तो बच्चा शिकायत करता है गुरु से, महाराज जी ये मिथ्या तो करती है अभी करता है कि नहीं करता ये अभी मिथ्या तो करती है। तो उन्होंने कहा क्या करती है? वो बिल्कुल निर्विकल्प है, सत्य है वो, असत्य होता तो छिपाता, मन बहुत निर्मल है, घर में जो जो करते हैं सब कुछ सुना देता है। बच्चों का मन केवली भगवान की तरह बिल्कुल निर्विकल्प रहता है, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ही व्याख्यान होता है वस्तु स्वरूप में गलती है तो गलती ही कहेगा वो, और वस्तु स्वरूप सही है तो सही ही कहेगा। गुरु अगर पूछे आपके बच्चे से क्यों सुबह माँ कहाँ गई थी, मंदिर गई थी, तो तुम भी साथ गए थे क्या? हाँ महाराज मैं भी साथ में था। तो वहां पर किस किस को नमस्कार किया उन्होंने? सही बोलेगा क्या गलत बोलेगा? वो सही बोलेगा। हाँ, सब अवलोकन करता रहता है। केवल ज्ञान में इतना सारा आता है, मंदिर में कौन थे, क्या थे, सब कैसे रिकॉर्डिंग करके आते हैं बच्चे, पता नहीं। बड़ों को इतना ध्यान नहीं रहता, कौन आए थे, कौन बैठे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन बच्चे एक ही नजर में कौन कौन आए थे सब ध्यान में रखते हैं। उनका मेमोरी पावर इतना सशक्त रहती है, वह एक मिनट के अंदर जो जो क्या क्या कर रहे थे सब देख करके आ जाते। और उनसे पूछो कि मंदिर में कितने लोग थे, महाराज बहुत लोग थे, क्या क्या कर रहे थे, महाराज सब लोग दोनों तरफ थे। और तुम, हम तो भगवान के पास इतना ही गए थे। तो एक बच्चा अंतर्मुखी है और बड़े लोग बहिर्मुखी है। बड़े लोगों में विवेक नहीं है, बच्चे में विवेक है। तो इसमें कौन गुरु और कौन शिष्य, बोलो। बच्चा ही तुम्हारा माँ बाप है, तुम माँ बाप नहीं हो। बिल्कुल, गुरु गुड़ बन गया, चेला शक्कर बन गया। और गुरुओं को ऐसा गुड़ क्यों बनना चाहिए, गुड़ गोबर क्यों बनना चाहिए? गुरु की, गुरु का जो पद है, पद की जो गरिमा है, उस गरिमा को समाप्त नहीं करना चाहिए। हमको लगना चाहिए कि हम बच्चों से बड़े हैं, बच्चों को धर्म भी सिखाना चाहिए, धर्म बच्चों को ये व्यवहार भी सिखाना चाहिए। धर्म और व्यवहार दोनों सिखाने के लिए माँ बाप को कैसे रहना चाहिए, माँ बाप को सावधान रह करके गुणों को धारण करना चाहिए। गुरु हम किसको कहते, गुणों के धारी को गुरु कहते। जो गुणों में बड़े हैं उनका नाम गुरु, जो स्वयं गुणवान है और दोषवानों को गुणवान बनाने की पात्रता रखता हो, उनको हम गुरु कहते हैं। ये गुरु की परिभाषा है। गुणों से गुरु या दोषों से गुरु? हाँ, गुणों से गुरु बनते हैं, दोषों से गुरु नहीं बन सकते। तो गुणों को झेलना चाहिए हमें, गुणों को बढ़ाना चाहिए, जितने गुण बढ़ सके बढ़ाना ही चाहिए। अपने अपने स्थान पर, अपने अपने योग्य क्षेत्र में जितने गुण बढ़ सकते हैं बढ़ाना ही चाहिए। गुरु का जन्म पहला होता है कि शिष्य का, एक प्रश्न है। गुरु का जन्म पहला होता है कि शिष्य का? शिष्य का जन्म पहला होता है, ऐसा? तो शिष्य जो बना ये गुरु के बिना बना क्या? तो पहले गुरु थे तभी तो ये शिष्य बना, थे कि नहीं थे? किसी एक व्यक्ति को शिष्य बनना हो तो कोई गुरु चाहिए पड़ता है ना। तो पहले से गुरु थे कि नहीं कोई? तो गुरु का जन्म पहला है या शिष्य का? दोनों का एक साथ जन्म? इधर सीनियरिटी गुरु की है मालूम है, क्योंकि सीनियरिटी इसलिए है कि वो गुणों में बड़े होते हैं इसलिए सीनियर हैं। सीनियर का मतलब बड़ा, किसकी अपेक्षा से? गुणों की अपेक्षा से बड़े। गुरु बड़े हैं, ठीक है, लेकिन उत्पत्ति की अपेक्षा से किसका जन्म पहला हुआ? शिष्य का कहो तो फिर उनको कोई गुरु मिले थे क्या? नहीं, तभी शिष्य बने। गुरु मिले बिना कोई शिष्य होता है क्या? हाँ, विचार दौड़ाओ, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। गुरु और शिष्य ये दो हैं, पहला किसकी उत्पत्ति होती है? नहीं सोच पाएंगे आप, आपका दिमाग उतना ही रहेगा जितना है। नहीं, बड़ा छोटे का सवाल नहीं, जन्म इन दोनों में से किसका पहले हुआ? तो यदि शिष्य का हुआ ये कहते हैं, शिष्य का हुआ ये कहते हैं, तो गुरु के बिना शिष्य का कहां से हुआ? पहले गुरु थे ना, शिष्यत्व शिष्यत्व को स्वीकारा है, लेकिन गुरु के पास गए थे कि नहीं? उस गुरु का जन्म पहले से ही था कि नहीं? तो पहले से गुरु थे, फिर बाद में आप शिष्य बने? शिष्य बनने से पहले क्या थे आप? न गुरु थे न शिष्य थे, गुरु थे। डायरेक्ट ही गुरु कैसे बन गए आप? शिष्य बनने से पहले क्या थे आप? सामान्य थे, न शिष्य थे न गुरु थे। जब गुरु मिले तभी आप शिष्य बने, तभी आप शिष्य बने। तो शिष्य कब बने? गुरु मिलने पर। तो पहले से गुरु थे क्या? नहीं। तो वो भी पहले शिष्य थे क्या? नहीं। गुरु भी पहले शिष्य थे क्या? नहीं। गुरु बनने से पहले शिष्य ही होता है ना कोई भी। तो वो जो गुरु हैं, जिनके सानिध्य में जाकर हम शिष्य बन रहे हैं, उनके भी कोई गुरु थे क्या? नहीं। वो भी शिष्य थे, वो शिष्य थे, तो उनसे पहले गुरु भी थे, और फिर उनसे पहले उनके कोई वो भी शिष्य थे क्या? नहीं। वो भी शिष्य थे। तो ये गुरु और शिष्य की परंपरा कब से है? अनादि से है, अनादि से है। और फिर गुरु और शिष्य में से ये जो उत्पत्ति स्थान है, वो गुरु शिष्य दोनों मिलने पर ही तो है। यानी एक गुरु को कोई सामान्य मिल गया तो ही शिष्य की उत्पत्ति होगी, और जब तक शिष्य की उत्पत्ति नहीं होगी तब तक वो गुरु है ही नहीं। गुरु कौन? जिनके शिष्य हो। गुरु कौन? उनके शिष्य होना ही चाहिए, तभी तो गुरु है ना। तो जिनके शिष्य हैं वही गुरु, तो फिर जिनके शिष्य ही नहीं वो कौन? जिनके शिष्य ही नहीं वो कौन? वो भी सामान्य। बराबर उदाहरण लागू हो गया। बिल्कुल उदाहरण फिक्स लागू हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब समझो। माँ बनने से पहले माँ क्या थी? सामान्य थी। सामान्य का मतलब बेटी थी, वो किसी न किसी की बेटी थी। ये बेटी ही माँ बनी। कब बनी? जब बेटा या बेटी आई तब माँ बनी। माँ यह पद है और बेटी भी यह पद है, दोनों पद हैं। माँ भी पद है, बेटी भी पद है। इन दोनों पदों की उत्पत्ति की अपेक्षा से कौन पहला और कौन बाद में, बताओ? बेटी बनने के बाद माँ बन गई कहते हैं ना, माँ बन गई। पर बेटी पहले आई होगी तभी तो माँ बन गई ना। तो बेटी पहले उत्पन्न हो गई ना, बेटी उत्पन्न पहले हो गई तभी तो माँ बन गई ना। बेटी आए बिना माँ कैसे बनी? ये दोनों अनादि से है मालूम है, ये दिख भी रहे हैं अनादि काल के ही हैं ये लेकिन उत्पत्ति की अपेक्षा से कौन पहला ये हम पूछ रहे हैं। माँ बेटी में पहले कौन? गलत, सभी गलत, दोनों की उत्पत्ति एक साथ है, दोनों की उत्पत्ति ही एक साथ है। देखो कोई शिष्य नहीं था और शिष्य बनने के लिए आया, एक व्यक्ति आया, उसने निवेदन किया महाराज आपका मैं शिष्यत्व स्वीकार करना चाहता हूं। निवेदन को हमने स्वीकार नहीं किया तो मैं गुरु बना क्या? नहीं बना। अब मैंने निवेदन को स्वीकार किया, मैं गुरु बन गया। किस क्षण बन गया? स्वीकार करते समय ही बन गया ना। और वो शिष्य कब बन गया? मेरे स्वीकार करते समय ही बन गया ना। तो गुरु और शिष्यत्व की उत्पत्ति एक साथ हो गई ना। वैसे माँ और बेटी एक साथ जन्मते हैं, माँ और बेटी इन दोनों का जन्म एक साथ है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है आपको? आ गया? ये दोनों पद हैं, ये दोनों पद हैं, माँ भी एक पद है और बेटी भी एक पद है। बेटी को बेटी नाम यह कब मिला? जब माँ मिल गई। और माँ को बेटी यह पद, बेटी को बेटी यह पद कब मिला? माँ मिल गई। और माँ को माँ यह पद कब मिला? जब बेटी आई। और इन दोनों का भेंट एक साथ होता है, गुरु और शिष्य का, दोनों का एक साथ ही जन्म होता है। माँ और बाप का, माँ और बेटी का, बाप और बेटे का एक साथ ही जन्म होता है, यह रहस्य, यह रहस्य अनादि से जन्म एक काल में होता है, एट ए टाइम, एट ए टाइम बाहर आ गए दोनों, एट ए टाइम बाहर आ गए गुरु शिष्य। जब स्वीकृति हो गई परस्पर में उसी क्षण दोनों का जन्म हुआ। गुरु ने कहा तुम शिष्य हो, शिष्य ने कहा तुम गुरु हो। स्वीकृति किधर से मिली? गुरु की तरफ से। मैं शिष्य बनना चाहता हूं, निवेदन किया। स्वीकृति किधर से मिली? गुरु की तरफ से। जिस समय स्वीकृति प्रदान कर दिया उसी समय शिष्य का जन्म हुआ, और प्रदान करते समय गुरु का जन्म हो रहा है। बड़ा सूक्ष्म है, सूक्ष्म दृष्टि से देखो है? बराबर है क्या? हाँ, किसी को पहले मत कहना, गलत हो जाएगा। आज अरहत भक्ति है, अरहंतों में भक्ति करना अरहत भक्ति। सही उपास्य इस संसार में कौन है? अरहंत भगवान है कि अन्य अन्य जीव भी हैं? क्या पूछ रहे हैं? सही सही हमारे लिए उपास्य अरहंत हैं क्या? और भी कोई हैं? अरहंत, देव, शास्त्र, गुरु, ये तीन ही हमारे उपास्य हो सकते हैं मानव मात्र के लिए। यही हैं तीन, इनको छोड़ करके कहीं कोई रास्ता ही नहीं है। कहीं भटकते भटकते आ जाओ, सब सब जगह भटकन है, लास्ट में आपको जब थक जाओगे सही रास्ता पकड़ोगे तो वो रास्ता कौन सा रहेगा? यही रहेगा। देव, शास्त्र और गुरु, ये तीन ही हैं। शरण संपूर्ण मानव मात्र के लिए ही नहीं, किंतु स्वर्ग के समस्त प्रकार के देवों के लिए भी, देवों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त नारकी जीवों के लिए भी। केवल नारकी जीवों के लिए ही नहीं, समस्त तिरंच प्राणियों के लिए भी एक ही आराध्य अरहंत भगवान। उनके समोशरण की सभा में सारे भक्त बन करके रहते हैं। उन भक्तों में से कोई भगवान है क्या? देव भी हैं, मनुष्य भी हैं और तिरंच भी हैं। ये सभी मिलकर के क्या कर रहे हैं वहां? किसकी भक्ति कर रहे हैं? किसके भक्त बन गए हैं? अरहंत भगवान के भक्त बन गए हैं। वे चार चतुर्निकायिक देवों में एक भी देव उपास्य नहीं है, सभी वो भक्त हैं। आराध्य नहीं है, वो सभी आराधक हैं। कहां आए हैं ये सभी लोग, देव लोग? समोशरण में। तो भक्ति दूसरों से करवाने के लिए आए हैं क्या? करने के लिए आए हैं? करने के लिए आए हैं। और अंतर्मुखी होने के लिए आए हैं क्या? बहिर्मुखी रहने के लिए आए हैं? हाँ, देव लोग भी अंतर्मुखी होने के लिए यहाँ आए हैं। त्रिरंच प्राणी भी अंतर्मुखी होने के लिए आए हैं। मनुष्य भी सारे अंतर्मुखी होने के लिए वहां बैठे हैं। अरहंत भगवान के चरणों में मुनि महाराज भी बैठे हैं, गणधर परमेष्ठी भी बैठे हैं, वे भी उपासक हैं, किंतु आप जैसे उपासक नहीं हैं। वे उपास्य पद को स्वीकार करते हुए उपासक पद में हैं और आप उपास्य पद को न स्वीकार करते हुए उपासक पद पर हैं। इतना डिफरेंस है। इसका चिंतन करो। क्या बताया? क्या बताया? गणधर परमेष्ठी भी उपासक और अन्य वहां देवगण, श्रावकगण, त्रिरंच, ये सभी उपासक हैं। ये सभी अंतर्मुखी होने के लिए आए हैं और अंतर्मुखी होने के बाद वह सम्यक दृष्टि बनता ही है जीव। क्या बहिर्मुखी रहते हुए सम्यक दृष्टि बनना संभव नहीं? अंतर्मुखी हैं ही वो। अंतर्मुखी होने के उपरांत ये अंतर्मुखी क्यों हम बन रहे हैं, उसकी कार्य सिद्धि कुछ है क्या? नहीं है। तो ये मुनि की सभा को छोड़ दो, वहां पर एक सभा छोड़ दो, माइनस कर दो, मुनियों की सभा। वे उपासक भी हैं और उपास्य भी हैं। उपास्य इसलिए हैं कि वो निर्ग्रंथ हैं, रत्नत्रय के धारी हैं, संयमी हैं। असंजदम न वंदे, संजदम वंदे। समझ में आया ना? असंयमी वंदनीय नहीं होता और संयमी वंदनीय होता है। सुन रहे हैं क्या? नींद आ रही है? मौके पर नींद। असंयमी वंदनीय नहीं होता है, संयमी वंदनीय होता है। तो संयमियों की सभा कितने हैं वहां? एक है। एक ही सभा में संयमी लोग हैं। और असंयमियों की सभा कितनी है? 11। बराबर 11 सभा, 12 सभाएं टोटल समोशरण में, 12 सभाएं टोटल समोशरण में सभाएं होती हैं। अब बोलो असंयमियों की सभा 11, संयमियों की सभा 1। संयमियों की सभा में जो संयमी बैठे हैं उनकी वंदना पूजा यदि करेंगे तो ये गुरु भक्ति हो जाएगी। जो नीचे बैठे हैं उनकी भक्ति करेंगे कि नहीं? 11 सभा वाले देव, त्रिरंच, मनुष्य, आरिकाएं, छुलक, ऐलक, श्रावक श्राविकाएं ये सब संयमी सभा में जो संयमी गुरुजन बैठे हैं उनकी पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे। इन्हीं की पूजा के लिए तो आए हैं ये सभी 11 सभा वाले। क्या पूजा करवाने के लिए आते? आप समोसन में जाओगे तो किसी की पूजा, किसी से पूजा करवाओगे? नहीं, पूजा नहीं करवा सकते, क्योंकि आपके पास उपासक पद ही केवल है, उपास्य पद नहीं है। और उपास्य और उपासक ये दोनों पद एक सभा में है, संयमी की सभा में। वहां जितने भी मुनि महाराज बैठे हैं वे किसकी भक्ति कर रहे हैं? अरहंत भगवान की भक्ति कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जगा रहे हैं। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाना बहुत कठिन पड़ता है, गुरु को बहुत कठिन पड़ता है, जगह जगह करके बोलना पड़ता है। मुनि महाराज किसकी भक्ति कर रहे हैं? अरहंत की। अब क्या बनना है उनको? अरहंत बनना है, इसलिए अरहंत के गुणों की भक्ति कर रहे हैं। और श्रावक भी बैठे हैं, कितने लोगों की भक्ति कर रहे हैं? वो अरहंत की भी भक्ति कर रहे हैं और मुनियों की भी भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या बनना है? उनको गुरु भी बनना है और अरहंत भी बनना है। ये दोनों उपास्य पद हैं। गुरु पद उपास्य पद है और अरहंत पद उपास्य पद है। वे सभी आए हैं उपास्य बनने के लिए, 11 सभा वाले। देव भी केवल उपासना करके निकल जाएंगे, उपास्य नहीं बन पाएंगे वो। केवल उनके माध्यम से उपासकों की आराधना पूजा गुणगान भक्ति वगैरह हो जाती है, बस यहीं तक उनका सीमित है। लेकिन आपका, आप यदि पहुंचे हैं तो उपास्य बन सकते कि नहीं? श्राविकाएं उपास्य बन सकती हैं कि नहीं? श्राविकाएं उपास्य बन सकती हैं कि नहीं? तीन बार पूछता हूं, अभी ख्याल नहीं रहा है। श्राविकाएं उपास्य बन सकती हैं क्या नहीं? उपास्य, उपास्य तो क्या रहेंगी श्राविकाएं? उपासक ही रहेंगे ना, उपासक, उपासक ही रहेंगे ना। क्या उपास्य भी बन जाएंगे? उपास्य यानी या तो गुरु पद या तो अरहंत पद, ये उपास्य पद हैं। उपास्य पद दो हैं वहां, या तो गुरु या तो अरहंत। इनमें से क्या बन सकती है बोलो श्राविकाएं? आरिका बन सकती है। आरिका पद भी उपास्य पद है क्या उपासक? बोलो उपासक। क्या उपास्य? यदि आरिका को उपास्य पद कहेंगे तो उनकी पूजा करनी पड़ेगी, नमोस्तु बोलना पड़ेगा और नमोकार मंत्र में उठा के बिठाना पड़ेगा। तुम भी हो, नमोकार मंत्र में आरिकाएं हैं क्या? नहीं, नहीं। सभा में मौजूद है, मौजूद इसलिए है उपासना करने के लिए आए हैं और उपासक बन के बैठे हैं। हम भी संयमी बनना चाहते हैं, इस पर्याय में बिल्कुल नहीं बन सकते, लेकिन आगामी जन्म में तो जाकर के हम कभी न कभी उसी उपास्य सभा में बैठेंगे, हम मुनि बन करके बैठेंगे। ये भावना है उनकी और इस भावना की पूर्ति इस पर्याय में नहीं होगी। आरिकाएं मुनियों की सभा में बैठ नहीं सकती, क्योंकि वो उपास्य नहीं है, वो भी उपासना ही करती है। आरिका भी जाप देती है, नमोकार मंत्र देती कि नहीं देती? और क्या कहती है? साधु बनने की इच्छा करती है या स्वयं को पूज्य समझती है? साधु बनने की इच्छा करती है। ये वस्त्रधारी पर्याय है, ये परिग्रहधारी पर्याय है। इस परिग्रह में पूज्य नहीं बन सकती, इस परिग्रह को रखते हुए संयमी नहीं बन सकते। वस्त्र का त्याग यही जैन धर्म है। दिगंबर धर्म का नाम क्या है? दिगंबर जैन धर्म। क्या वस्त्रधारी परिग्रह जैन धर्म ऐसा है क्या? नहीं, जैन धर्म का नाम दिगंबर है। दिगंबर अंदर से भी दिगंबर, बाहर से भी दिगंबर। जैन धर्म का नाम ये नहीं कि केवल बाहर से दिगंबर जैन धर्म, नहीं, अंदर से भी दिगंबर, बाहर से भी दिगंबर, ऐसा उभयात्मक जैन धर्म है। उभय रूप है, उभय यानी दो रूप, अंदर से भी दिगंबर हो, बाहर से भी दिगंबर। अंदर से दिगंबर कौन? जिन्होंने कषायों को जीत लिया है, तीन चौकड़ियों को जीत लिया है, वे भाव दिगंबर हैं। तीन चौकड़ियों को अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी तीन कषायों को जिसने जीता है वे भाव दिगंबर जैन। और जिन्होंने केवल बाह्य परिग्रह छोड़ा है किंतु अंतरंग से तीन चौकड़ियों को नहीं जीता है तो भाव दिगंबर, ये द्रव्य दिगंबर जैन है। इस द्रव्य दिगंबर जैन को नमोकार मंत्र में रखा नहीं गया है, दिगंबरों को भी नहीं रखा गया है। कहां पर? नमोकार मंत्र में। कौन से दिगंबर को? द्रव्य दिगंबर को नहीं रखा गया। जो द्रव्य से भी दिगंबर हैं और भाव से भी दिगंबर हैं उनको नमोकार मंत्र में रखा गया है। और उनकी भक्ति करना ये अरहत भक्ति है, ये सच्ची गुरु भक्ति है। और अंतर्मुखी होकर के करना ये निर्दोष भक्ति है। आप भक्ति करें, निर्दोष करें, निर्मल करें। कैसे करें? सम्यक्त्व को धारण करके भक्ति करना और समस्त विषय कषायों की कामना को दूर करके आत्मा की उपलब्धि के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए जो आप भक्ति करते हैं उसी का नाम निर्दोष भक्ति, निर्मल भक्ति है। ऐसी भक्ति के माध्यम से कर्म की निर्जरा होती है और कर्म की निर्जरा से परमात्म पद की उपलब्धि होती है। यह अरहत भक्ति भावना को आप लोगों ने सुना, इसके माध्यम से जो अर्घ्य चढ़ाया है वह अर्घ्य आपको तीर्थंकर प्रकृति के बंद के कारणीभूत जो भावनाएं हैं वे भावनाओं का संस्कार मजबूत हो और आपकी आत्मा भी बाई चांस तीर्थंकर बन सके तो बने। अहिंसा परमो धर्म की जय। हमारे पास ज्यादा कमंडलो कहाँ से आएंगे? दीक्षा लेना हो तो कहीं से ढूंढ के लाना पड़ेगा, मैं वापस दे देता हूँ।
कमंडल साठी थांबला असला तर मी आहे बाबा।